और इसके बाद अब अगली चीज हम लेंगे इंशाल्लाह, वो क्या है नेक्स्ट स्टेप, मालूमात भी होनी चाहिए और गौरव फिक्र भी। जी ये कैसे है, आइए थोड़ा सा बुक में से पढ़ते हैं। मालूमात भी होनी चाहिए और गौरव फिक्र भी, शरे सदर करने वाली चीज़ों में ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात, मुआरिफ और उलूम हासिल हों, सकाफ़तों का वसी मुतालिया हो, साथ ही फिक्र में गहराई और गहराई हो, नज़र में इसाबत हो यानी पुख्तगी हो, पुख्ता नज़र हो इंसान, दलील को दिक्कत नज़र से देखिए यानी बारीकियों से देखा करे दलीलों को, मसले की तह तक पहुँचे, उमूर व अशिया की हकीकत और मकासद तक रसाई हासिल हो। और अल्लाह ताला सूरत फातिर में क्या कहते हैं, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से इसके जानने वाले बंदे ही ज्यादा डरते हैं। 28 आयत है। और क्या पता चला कि खशियत का नाम इल्म है, इनके इल्म में जो नाया उसकी ये तकजीब ही करते हैं। आलिम तो वो होता है जो कुशादा जर्फ हो, बड़े दिल वाला हो, इसे शरह सदर हासिल हो, इसका दिल मुतमईन हो, एक एक लफ्ज पे बाद में गौर करे। शायर कहता है कि जितना ही इसे खर्च करोगे बढ़ेगा और जितना ही इसे हाथ बंद कर रखोगे इसमें कमी आएगी। एक मगरबी मुफक्किर लिखता है, ऑफिस की दराज में एक फाइल मैंने बनाकर रखी हुई है जिसमें मैं अपनी रोजाना की कारस्तानियां, लग्जिशें और गलतियां जो रात दिन सरजद होती रहती हैं लिखा करता हूं। इस बारे में उलमा इस्लाफ और सलफ़ उम्मत यानी पुराने जो उस्ताद थे और जो इमाम थे, एहतसाब नफ्स और बारीक बीनी से अपनी ही गलतियों को पकड़ने में मुफक्कर मज़कूर से भी भरे हुए थे। यानी ये ऊपर जिस मुफक्कर की बात है कि वो रोज़ शाम को अपने सारे दिन की गलतियां और जो भी खराबियां थी वो लिखता है ताकि दोबारा आइंदा वो ना करूँ, तो वो करता है। लेकिन हमारे दीन के असलाफ थे जो, वो तो इससे भी ज्यादा अपना एहतसाब करते थे। और अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं, ला अक्सिमु बिन नफ्स लवामा, और नहीं मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। सूरत क़यामत की पहली आयतें हैं। हसन बसरी कहते हैं कि मोमिन अपना एहतसाब इससे भी ज्यादा करता है जितना साझीदार, साझीदार कौन होता है, पार्टनर, यानी दो भाई ही क्यों ना हो, इकट्ठे काम पे हों तो एक दूसरे का हिसाब बड़ा रखते हैं। तुमने बड़ी गाड़ी ली, मेरी छोटी है, तुम अपना हिस्से से ज्यादा ले गए, ये है वो है। तो कहते हैं कि मोमिन अपना एहतसाब अपने पार्टनर के हिसाब लेने से भी ज्यादा करता है। रबी बिन हसीम जुमे से जुमे तक की अपनी बातें लिखा करते थे, अगर ठीक पाते तो अल्लाह की हम करते और बुरा पाते तो इस्तगफार करते। सलफ में एक ने कहा, मैंने 40 साल पहले एक गुनाह किया जिसकी मगफरत की दुआ मैं बराबर करता रहता हूँ। उन्होंने तो एक किया था ना, इसलिए उनको याद था 40 साल तक। हम एक दिन में 40 गुनाह कर दें फिर कहाँ याद रखे, कौन इतनी गिनती पढ़े। और वो लोग जो अपने माल में से देते हैं और इनके दिल डरते रहते हैं, बात सच है। सूरत मोमिनून में आता है ना, वातो मातो, वो देते हैं और उनके दिल वजीलत खौफ सदा होते हैं। तो क्या सीखा हमने कि मालूमात भी होनी चाहिए और गौरव फिक्र भी हो। सिर्फ मालूमात जमा करने का नाम इल्म नहीं है, लिख ले अपने लिए। हम मालूमात कहते, पहले ये बात कभी नहीं सुनी, पहले किसी ने ये नहीं बताया, आप मवाजना ही करते रह जाएंगे। मालूमात की एक हद होती है, याद रखिए, बहुत कुछ मालूमात भी मिल जाए और गौरव फिक्र की आदत ना पड़े तो आपको वो मालूमात बल्कि बोझ देती हैं। एक लफ्ज हम बहुत बोलते हैं, शरह सदर, रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी, ये मांगिए। शरह सदर जब हो गया तो नेक्स्ट, इस पे हो गया तो नेक्स्ट। जिस चीज पे आपका सीना खुल जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, नंबर एक शरह सदर के असबाब में से कुछ चीजें अगर हम देखें तो बंदे के अंदर ना सिर्फ ये कि मालूमात को लेने की तलब होती है बल्कि मार्फत भी मांगता है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आगे से पहले कितनी अल्लाह ताला के करीब हुई, कितना कुर्ब उसका महसूस किया। फिर इसी तरह इंसान सकाफतों का वसी मुतालिया करता है, यानी इर्द गिर्द क्या हो रहा है किधर, यानी उसका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर फिक्र में गहराई आती है, नज़र में पुख्तगी आती है, छोटी सी बात के बाद आप मसले की तय में पहुंच जाते हैं। दो लोग आते हैं अपना मसला लेकर अभी 5 मिनट नहीं गुजरे होते आपको साफ समझ आ जाता है कि कसूर इसका। ये आके रो तो रही है लेकिन कसूर शौहर का नहीं, इसका ही है। इसी तरह दो बच्चे हैं झगड़ते हुए आ गए। जो पहले आता है वो अमूमन वो याद रखे कोई ज्यादती करके आया होता है। दूसरे ने बदला लेने के लिए थप्पड़ मारा तो वो रोता हुआ माँ के पास आया। माँ भी देखती ये रो रहा है, वो भी बड़े को एक थप्पड़ मार देती है। बाद में पता चलता है कसूर ये छोटे का था। तो बहुत सफा जिंदगी में हमें लोगों के मामला डील करने नहीं आते। हम बहुत सारी चीज़ों में गलत असेस करते हैं। माएँ भी अपने बच्चों को रॉन्ग असेस करती हैं, इसी तरह उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को रॉन्ग असेस करते हैं। फिर इसी तरह हम सतहियत के साथ जीते हैं, और इसी तरह फिर कह लीजिए कि जब शरे सदर होता है ना तो इसके बाद फिर आप जब हकीकत के करीब जाते हैं तो मकसद तक पहुंच जाते हैं। बहुत गहरा इल्म है ये, इसी से जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आता है। तो क्या सीखा है कि अभी गौर व फिक्र भी करना है, सिर्फ इल्म नहीं लेते रहना। एक दफा लेके 10 दफा गौर व फिक्र करें तो ये 10 दफा लेने से बेहतर है। जुमला लिखिए, एक दफा लिया गौर व फिक्र करिए, एक एंगल से, दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से, चौथे से कीजिए, आपका शरह सदर बढ़ेगा। आप गौर व फिक्र करते जाएं, एक दफा पढ़ें 10 दफा गौर करें, 10 उकदे समझ आएंगे। कुरान एक ऐसे कुएं की तरह कि आप जितना गहराई के साथ उसमें डूबते ही जाते हैं आपको अल्लाह ताला उतना फायदा देता है। अब सवाल यह है कि गौर व फिक्र से मिलता क्या है। लिखिए, कुरान में बहुत दफा आता है, सूरह मोहम्मद में अफला या तदब्बरून अल कुरान। तो पहली बात है कि जहनी और कल्बी इबादत है गौर व फिक्र। हम में से बहुत कम लोग गौर व फिक्र को इबादत कहते हैं। बस आप बैठे हैं, मैं आपको कहती हूँ छोड़िए क्या पढ़ना है, कुरान सुबह से पढ़ रहे हैं, आइए बाहर चलते हैं, घूमते हैं, जरा बाग में जाके अल्लाह की कुदरत देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे क्या वक्त जाया करना है, आप एक आयत और पढ़ा दें। हम में से बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने को इबादत कहते, रोजा रखने को इबादत कहते, लेकिन गौर व फिक्र को इबादत नहीं कहते। और इतनी आसान इबादत, ना आपको वजू की जरूरत, ना रुकू की, ना क्याम की, चलते फिरते अला जुनूबिहिम, करवटों पे चलते फिरते, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफिल लैली वन नहार। सुबह शाम अगर सिर्फ बाहर चलती हवा और उड़ते बादलों को आप देख रहे हैं ना, तो फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह ताला ये तेरा बंदा सारा वक्त इबादत की हालत में रहता है। लेकिन हमारे तो दिलो दिमाग पे गम ही बहुत है। लिखिए जरा, वो साथी जो डिप्रेशन के शिकार है, परेशान है, हाय क्या हो गया, लिखे अपना गम कितना को बड़ा है, बच्चे कह, शोहर कह, मियाँ बीवी आपस के मामला जो भी लिखिए, और उसके बाद खुली जगह चले जाए, अपने गार्डन में चले जाए, हवा देखिए, चलते हुए बादल देखिए, कभी सूरज छुपता है कभी आता, थोड़ी देर बाद आपको याद भी नहीं रहना कि आपको गम क्या था। तो इससे इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि गौर व फिक्र जो है ये अमल पे उभारता है। जितना गौर करेंगे उतना अमल बढ़ेगा, ये तो पक्की बात है। हम बाज दफा पढ़ना बराए पढ़ना, लिखना बराए लिखना, याद करना बराए याद रखना, और सो ऑन, यानी वो जो इल्म के साथ एक रस्मी कलामी तरीका होता है हम उसमें उभरे रहते हैं, और अमल के वक्त से पहले ही हम थक चुके होते हैं या हमारा वक्त ही पूरा हो चुका होता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि गौर व फिक्र का एक फायदा क्या है कि इससे इबरत और नसीहत मिलती है। इबरत लेने के लिए गौर व फिक्र करना पड़ता है, एक ही चीज है, एक गौर व फिक्र करके उससे इबरत ले लेता है, दूसरा कहता है आज तो कोई खास गौर व फिक्र की जरूरत ही नहीं, आज की आयत तो बहुत आसान है। कई दफा हम एक एक आयत पूरा पूरा दिन में करते हैं, पूरी क्लास के टाइम पे सिर्फ एक आयत होती है, और अक्सर एक ही हो रही है आजकल जब हम आयत बायत करते हैं। और जब आयत मैं खुद भी शुरू कराती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो 10 मिनट में हो जाएगी, आज 10 आयतें कराऊंगी। जो साथी सुन रहे हैं उनको पता है वो 10 तो आज तक हुई नहीं रमजान के बाद से, ज्यादा ज्यादा हुई तो 3 आयतें हुई, और एक लफ्ज भी उस आयत से बाहर नहीं, हम जाते कि इधर की बात उधर की बात उधर से उधर, वो भी नहीं होता क्योंकि वो उस आयत के अंदर डिफरेंट एंगल होते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हर चीज की हकीकत का इदराक होता है गौर व फिक्र से। चीजों को गौर से देखा करें, हमारा मुशाहिदा कुछ चीजों में बहुत तेज है, दूर से देख लेते हैं कि ये असली कपड़ा पहना हुआ है किसी ने कि नकली है, ये रियल ब्रांड है या रेप्लिका है, ये जापानी है मेड इन जापान है या मेड एज जापान है, फलाने मेकअप कहाँ का, कि एक एक चीज पे माशाल्लाह हमारी हकीकत खुलती है। हमारे ऊपर इदराक नहीं होता तो चीजों की हकीकत नहीं होता, क्योंकि गौर व फिक्र जिस चीज में करेंगे आप उसी के मास्टर्स बन जाएंगे। फिर इस तरह देखिए, नफ्स का एहतसाब और गलतियों से सबक सीखता है इंसान। सबसे ज्यादा अगर आपको अपनी फिक्र लगी हुई है तो मान लीजिए कि आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि उलमा का अमल हर कॉलम ने देखा। हसन बसरी कहते हैं अपने पार्टनर से ज्यादा अपना एहतसाब करो, बड़ी बात है। सबसे ज्यादा हिसाब बंदा उसका करता है जो बिल्कुल उसके बराबर का साझी होता है, उससे ज्यादा अपना कीजिए। इसी तरह रबी बिन हसीम का देखा कि एक जुमे से अगले जुमे तक अपने अमाल लिखते, ठीक होते तो हम्द करते और कोई कमी दिखती तो इस्तगफार करते। तो कह लीजिए कि अपने ऐबों पे पड़ी नजर के जमाने में कोई बुरा ना रहा। आप जब भी दुखी हो, परेशान हो, आपका हंसने को दिल नहीं कर रहा, आपका बोलने को दिल नहीं कर रहा, लोग देखें कि आप उस वक्त अपने बारे में गौर करें। तो आज के बाद एक टिप लें, मैंने दूसरों के गम से ज्यादा अपना गम करना। और आम देखिए, जो लोग डिप्रेशन में गए होते हैं ना, वो जरूर किसी और को वजह बनाएंगे। जो जिसका वीक पॉइंट होता है ना, वो उसी को वजह समझकर इस तरह के काम कर रहा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा की रिवायत है और सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2750, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बंदा एक बात करता है, इसमें गौर व फिक्र नहीं करता, और वो इस बात की वजह से मशरिको मगरिब की दरमियानी मुसाफत से भी ज्यादा दूर यानी जहन्नुम की आग की तरफ गिर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कल से लेकर आज तक सोचिए, कोई बेसोचे बात तो नहीं कह दी किसी को, गौर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात थी, ये कोई इतना बड़ा गुनाह था, इतनी बड़ी खराबी थी, लेकिन आप उसकी वजह से कहीं जहन्नुम के करीब तो नहीं चले गए? तो सोच के बोलिए, बड़े क्या कहते थे, पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो, 100 दफा सोचो फिर 1 दफा बोलो। लेकिन आज आप देखिए कि हमारी बात से किसी का दिल टूटे, कुछ भी हो, आम तौर पे इसकी फिक्र कम ही होती है। तो फिर क्या सीखा कि हमने गौर व फिक्र करना है, मालूमात को जमा करने को इल्म नहीं समझना, बल्कि इन मालूमात के एंड पे अल्लाह ताला का कुर्ब और अपनी जात का मुहासबा और एहतसाब करना सीखना है। इसीलिए अगली टिप है हमारे पास, अपना एहतसाब किया कीजिए। हम सियासतदानों के लिए एहतसाब कमेटी ने बनाने की बातें करते हैं, नहीं करते तो हम अपना एहतसाब नहीं करते। एहतसाब क्या होता है? मुहासबे ही से बड़ी हुई आगे चीज है, यानी अपनी गलतियों को खुद चुनना। और मैं कह सकती हूँ कि एहतसाब से मतलब है कि अपने पेपर खुद चेक करना। अगर हमें अपने पेपर्स खुद चेक करने पड़ जाएं, या अगर हमें अपने नामे अमाल को खुद नंबर देने पड़े, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने कितनी गलतियां की। कहते हैं कि अपने पास एक डायरी रखिए और इसके जरिए अपने एहतसाब करते रहिए। इसमें अपनी मनफी आदतें लिखिए और इनके मुआलजे में पेशरफ्त हुई हो इसे भी नोट कीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपना एहतसाब कर लिया करो कबल इसके कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हासिबू कबलान तो हासबू, आमाल को तोले जाने से पहले वजनदार बना लो और अल्लाह ताला के सामने पेशी के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं? सोचें हम सब, क्या हम अपना हिसाब करते हैं इससे पहले कि हमारा हिसाब हो जाए? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 3 गलतियां बराबर होती रहती हैं। सोचिए जरा, आप अपने ऊपर लें, क्या होंगी? अपनी बगैर सुने सोचें, लिखें। 3 गलतियां मुस्तकिल लोग करते रहते हैं। अब आप सोचेंगे वो क्या होंगी, फिर भी हम किसी दूसरे को ढूंढते हैं कि वही होगा जिसकी वजह से। नहीं, सबसे पहले गलती, हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं। 24 घंटों में से बहुत सारा वक्त हम जाया कर देते हैं। एक ही वक्त होता है सबके पास, कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, हम नहीं कर पाते। फिर इसी तरह से आप देखिए कि ला यानी बातें करना, बेतुकी बातें, किसने क्या कहा, किधर हुआ, अच्छा ये हो गया, कोरोना फैल गया, इतने मर गए, उधर लॉकडाउन हो गया, ये गलत, उधर ये हो, ला यानी बातें हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मिन हुस्न इस्लाम तर्कुहुमा ला यानी, किसी आदमी के इस्लाम का हुसन यह है कि बेकार बातों को वो छोड़ दे। तो पहली चीज वक्त की बर्बादी, फिर ला यानी बातें करना। तीसरी बात यह है, ये बहुत बड़ी बात है, हम कम तरीन और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं और अहम चीजों को छोड़ देते हैं। बिलीव मी, अगर इसका हमें यकीन आ जाए ना, तो हम अपना कभी इतना सस्ता सौदा ना करें। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम इन चीजों से अपने आप को पीछे करके, यानी कह लीजिए कि बड़ी नेकी को छोड़कर छोटी नेकी पे राजी हुए होते हैं। मसला आप देखिए, अफवाहबाजों की बात पे कान धरना, हौसला शिकनी करने वालों की पेशन गोइयों और वसवसा अंदाजों के वहमो ख्याल को सुनना, इससे फौरी कदूरत और रंजो गम तो पैदा होते ही हैं, खुशबख्ती और दिल का सुकून भी रुखसत हो जाता है। यानी हर बात, हर चीज, हर एक क्लिक पे आप फौरन फोन पकड़ें, क्या हुआ, किसने कहा। हर पोस्ट को आप पढ़ें, हर वीडियो को चेक करें, हर शख्स की बात सुने कि कोरोना का इलाज कैसे है। थक नहीं गए लोग? हर बंदा बोल गया, वो भी बोल गया जिसको बोलना नहीं आता, वो भी लिख गया जिसको लिखना नहीं आता, कि किसी तरह मेरा क्लिप आगे चला जाए। मिराउल कईस कहता है, ये शायर है अरब बहुत मारूफ, कहता कि पुराने टीले तुझे सुबह सुबह सलाम करता हूँ, क्या पुराने जमानों के लोग सलामत हैं। सलामती तो बस उसी को मिलती है जिसे नेमत हासिल हो, जिसकी उम्मीदें कम हो और जिसकी रातें खुशगवार गुजरती हों। यानी टीले तो खड़े हैं, लोग चले गए, पुरानी चीजें पुरानी ही हैं। ओल्ड इज गोल्ड, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, बिल्कुल ये शायर का एक लतीफ सा अंदाज है लोगों को ये दिखाने के लिए कि जमाने के अंदर इस्तेहकाम सिर्फ उन्हीं को है कि जिनकी उम्मीदें कम हों और रातें खुशगवार गुजरती हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हुम को ऐसी दुआ सिखाई जो दुनिया आखरत दोनों की खुशी को जमा करने वाली है, और ये जामे माने और काफ़ी और शाफी दुआ जिसमें दुनिया आखरत दोनों की भलाई मांगी गई ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ्वा वल-आफिया। फरमाया कि अल्लाह ने इनको दुनिया का सवाब और आखरत का बेहतरीन अजर अता किया, वो ना गुमराह होगा ना बदबख्ती का शिकार होगा। तो फिर इस ट्रिप में क्या दिखा कि हमें अपना एहतसाब करना है, किया करें। आप अपना कर लेंगे ना तो दूसरे इंशाल्लाह आपका एहतसाब नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है कि जो अपना घर खुद साफ कर लेता है उसका घर दूसरे को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने काम मामलात खुद नपेट लें तो दूसरा आप पे रहम नहीं खाएगा कि लाए मैं आपकी मदद कर दूं। और हजरत उमर का ये कॉल अपने हाथ से लिखिए कि अपना एहतसाब किया करो कब्ल इसके कि तुम्हारा एहतसाब किया जाए। मैं इसको अक्सर एक मिसाल से समझती हूँ कि कभी कभी जख्म बनता है फिर उसमें पस पड़ती है। एक ऐसा था दाना बन जाता है कि उसका मुंह नहीं होता, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक कट लगाएगा और उसमें से पस निकालेगा जिसमें दर्द भी और तकलीफ भी है। इसके बरक्स अगर इंसान खुद रुई लेकर गीले कपड़े से कुछ भी हल्का हल्का सहलाए, एक दफा उसकी पस बाहर निकली तो नरमी आ जाएगी। अपने गुनाहों का पस खुद निकाल लें, आसानी होगी, ज्यादा दर्द नहीं होगा। कल क्यामत के दिन जब हमारे गुनाहों के पटारे खुलेंगे और हमारे गुनाहों की पस और पीप निकाली जाएगी तो चीखें निकल जाएंगी, और ये अमल अमूमी तौर पे पुलसरात पे होगा। वहाँ कुलूब है, वहाँ आंकड़े हैं, वहाँ हराम का माल निकलेगा, वहाँ गंदी चीज़ें दिल से भी और जिस्म से भी निकाली जाएंगी, और जब तक बंदा पूरा पाक ना हो जाए उसको जन्नत में जाने का एनओसी नहीं मिलेगा। तो सारी जिंदगी तो गुजार दी ना, लोगों के बारे भी जानते रहे, फलां के हाथ उसकी नीयत खराब, उसका अमल खराब, उसका तो ये भी खराब, अब अपना शुरू करें। और हो सकता है कि हम खुद को साफ करें तो जब मौत आए तो हम पूरे साफ हो चुके हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि एहतसाब के फवायद क्या क्या हैं। पहली बात है कि नेकियों की रगबत होगी, जाहिर बात है जब आपने जो जरा सा अपना कल का नाम माल देख लिया या आपको कल के दिन पे गौर किया तो आपको कोई अच्छी चीज दिखी, आपका दिल खुश हुआ, तो अब आज आप और भी नेकियां करेंगे ताकि आपका दिल और खुश हो। इसी तरह आपको अपने पिछली जिंदगी में गुनाह दिखे तो गुनाहों का इदराक होगा, तो आज आप गुनाह जो हैं वो छोड़ते जाएंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बायसे पशेमानी गलतियों को दोहराने से निजात मिलेगी, ये भी बहुत जरूरी है। हम चंद लोगों में बैठकर अपनी इसलाह करवाना पसंद नहीं करते तो पूरी दुनिया के सामने फिर हमारी बात जाती है और फिर सारी दुनिया को हक होता है कि वो आपके ऊपर कमेंट्स दे। फिर इसी तरह वक्त जाया करने वाले कामों से निजात होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, गालिबन मौलाना जफर का शेर है कि पड़ी अपने ऐबों पे नजर तो जमाने में कोई बुरा ना रहा। वक्त ही नहीं मिला आपको दूसरों को देखने का, आप तो अपने ही गुना चुनते रहे। आप देखिए जिस्म से चेहरे से एक एक बाल एक एक मुसाम खुलवाते हैं, फेशियल भी है, पॉलिशर भी है, पता नहीं क्या कुछ है, कभी रूह का भी करे, कभी इंसान अपने अंदर अपनी तबीयतों को भी तो देखे। देखिए अपने ही जैसे लोगों को देख लें, अपने हम उम्र लोगों को देख लें, हमें अपने हम कल्चर लोगों को देखें, जब वो ये कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे में कमी क्या है, क्या अल्लाह ने मुझे कमियों के साथ भेजा है। तो इंशाल्लाह आप जितना ज्यादा अपना एहतसाब करते रहेंगे आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में तब्दीलियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी। और ये जो दुआ है ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ्वा वल-आफिया, दिल जुबान के साथ इसको अपने साथ रखें। आपको नहीं पता आपके नसीब में क्या बीमारी थी, कोई जरासीम चिपकने वाला था, कोई परेशानी आने वाली थी। आपने फौरन कह दिया कि अल्लाह इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफिया। और इस पे हमने बहुत बात की हुई अपने दुआओं के सेशन में कि असल दुआ आफियत की दुआ। और किससे आफियत? बीमारियों से आफियत, जरासीमों से आफियत, लड़ाई झगड़ों से आफियत, चोरों डाकुओं से बचाएगा अल्लाह। यानी जिसने अल्लाह से ये दुआ मांग ली, अल्लाह ताला फिर उसको हर गम और हर तकलीफ से निकालेगा इंशाल्लाह। अगली टिप क्या है? दिफा का सामान कर लें। बंदे को इससे भी खुशी मिलती है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल के साथ एहतियात का दामन ना छोड़े, असबाब को काम में लाए। जब आप निकले जंगों में, आपने जिरा भी जेब तन की, हालांकि आप तो मुतवक्किलीन के सरदार हैं, यानी आपका तवक्कुल बिल्ला बहुत मजबूत था। एक ने आपसे पूछा कि मैं अपनी सवारी को खूंटे से बांध दूं या तवक्कुल कर लूं, तो फरमाया कि इसे बांधो और तवक्कुल करो। यानी असबाब इख्तियार करना और साथ ही अल्लाह पर तवक्कुल, यही तौहीद की जान है। जबकि असबाब इख्तियार ना करना, महज तवक्कुल करना, शरीयत से नावाकफियत है। जैसे कि सबब इख्तियार करना और तवक्कुल छोड़ देना भी तौहीद में कमी की बात है। इस सिलसिले में इब्ने जौजी कहते हैं कि एक शख्स ने नाखून काटा जो बढ़कर जख्म बन गया। कभी ऐसा होता है आपके साथ भी, स्किन कट जाती है फिर जख्म बन जाता है। इसने एहतियात ना की हत्ता के मर गया। एक शख्स सरदान के गधे पर चढ़ा और इसका पेट भेंच दिया, वो मर गया। बताया जाता है कि मशहूर मिस्री मुसन्निफ तौहा हुसैन अपने ड्राइवर से कहता था, जल्दबाजी ना करो तभी हम जल्दी पहुंचेंगे। कितनी खूबसूरत बात है, जल्दबाजी ना करो तभी हम जल्दी पहुंचेंगे। एक मिसाल में जो कहा गया कि बसा औकात जल्दी मचाने से देर हो जाती है, यही इसका मफहूम है। शायर भी कहता है, कभी कभी सब्र से काम लेने वाला जरूरत पूरी कर लेता, और जो जल्दी मचाता है वो लग्जिश खा जाता है। मतलब यह है कि बचाओ और एहतियात तकदीर के मुनाफी नहीं, बल्कि इसी का एक हिस्सा है, इसकी रूह है। एहतियात और नरमी बरतें। ऐसे लिबास तुम्हें दिए जो गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे लिबास जो तुम्हारी तवानाई को महफूज रखते हैं। मुराद तो है सूरह नहल में लिबास की मुख्तलिफ किस्में, जिसमें जिरा और इस तरह के गर्मी सर्दी के कपड़ों की बात है। तो क्या सीखा? कि दिफा का सामान कर लें लाजिम है। आप सिर्फ तवक्कुल बिल्ला के नाम पर बैठ नहीं सकते। आप प्रिकॉशंस लीजिए, एहतियात कीजिए, जो भी आपको कहा जाता है वो करें, उसके बाद तवक्कुल अल्लाह पे। मसला क्या है कि सब कुछ करके भी खौफजदा हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल दूसरी तरफ हैं, वो अल्लाह का नाम ले लेकर सारे रूल्स को तोड़ते हैं। तो हमारा दीन बीच का दीन है। ये खूबसूरत तरीके से लोगों को सिखाता है कि अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार रखो जो तुम्हें आ सकते हैं। और ये जो रिवायत बार बार आती है ना, तवक्कुल और ऊंट को बांधने की रिवायत, तिर्मिजी की रिवायत है 2517, एकिलहा व तवक्कल, ऊंट को पहले बांधो फिर तवक्कुल करो। और अल्लाह के नबी की जिंदगी से जब हम तवक्कुल की मिसालें देखते हैं, तो जंगों में आप जिरा पहनते थे, जंगी तदाबीर भी करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत 4540 से हमें पता चलता है। सफर में हिफाजत और पहरेदार भी मुकर्रर करते थे आप, और दुआएं भी किया करते थे। तो असल काम यही है, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुभान व तआला। अगला टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है कि लोगों को अपना बनाइए। कहां हम अपनों को भी काट देते हैं, ये भी हमारे गमों की एक बहुत बड़ी वजह है। याद रखिए, आप इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, आपको लोगों की जरूरत है। ये दुनिया, ये इंसान, ये उन्स, ये सब कुछ साथ साथ चलता है, तभी दुनिया में कामयाबी होती है। तो लोगों को अपना कैसे बनाना है? इंसान की खुशी के असबाब में से ये भी है कि इसमें लोगों को अपना बनाने, इनकी मोहब्बत हासिल करने और इनका दिल जीत लेने की सलाहियत हो। पूछिए अपने आप को, हर बंदा अपने आप को बहुत अच्छा जानता है, यह अलग बात है कि हम गौर नहीं करते। तो अगर ये तीन चीजें या तीनों में दो भी हैं आपके अंदर, तो आप खुशकिस्मत हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात वालों में मेरा अच्छा तज़किरा कीजिए। वजल लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। मुफस्सरीन ने लिसान सिदक से मुराद अच्छा तज़किरा और जिक्र खैर लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, तेरे लिए मैंने मोहब्बत पैदा कर दी। वल्कैतु इलैका महब्बतम मिन्नी। بس اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ سے محبت کرتا ہے. صحیح حدیث میں آیا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ. بڑی بات ہے یہ بھی, یعنی اللہ کے گواہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ انسانوں کی گواہیاں قیامت کے دن بہت بڑے بڑے فیصلے کروائیں گی. دعا کیا کریں کہ لوگ ہمارے حق میں اچھی گواہی دیں, یعنی حق کی زبان اور اس کا قلم ہو. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے, لہٰذا اس سے محبت کرو, تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. محبت کے اسباب میں سے خندہ پیشانی, نرم کلامی اور حسن اخلاق ہے. سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گی کیا ہے, وہ آپ کی نمازیں, روزے, آپ کے کھانے کھلانے نہیں, وہ نرم خوئی ہے. اور فرمایا جو نرم خوئی سے محروم ہوا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. ایک حکیم تو یہ بھی کہتا ہے کہ چمکار سے تو سانپ بھی اپنے بھٹ سے نکل آتا ہے, یعنی ذرا پیار سے چمکاریں, اس کو بلائیں تو سانپ بھی باہر آ جائے گا. یورپ والے کہتے ہیں شہد توڑو لیکن چھتا نہ توڑو. اور صحیح حدیث ہے کہ مومن اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاک چیز کھاتی ہے اور پاک چیز پیدا کرتی ہے, جب کسی خوشبودار پودے پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑ نہیں دیتی. اسی بک میں ہم نے پیچھے یہ ٹاپک بھی پورا پڑھا تھا. اور اپنے اوپر لے کر دیکھیے, کیا میں مکھی ہوں؟ پاک لے کر پاک دیتی ہوں؟ بس لیتے پاک ہیں لیکن دیتے نہ پاک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لیتے ٹھیک چیز ہے لیکن عمل نہیں کرتے, اور بس گندا لیتے ہیں. غلط عقائد کے ساتھ نیکیاں سیکھتے ہیں. تو اپنے لیے ہمیشہ ایک معیار رکھیے کہ میں نے اپنے اندر یہ خوبی لے کر آنی ہے کہ میں نے دوسروں کو اپنے قریب لانا ہے. پیار تب ملے گا جب آپ سچے ہوں گے, مخلص ہوں گے, محبتوں کے پیامبر ہوں گے. اگر آپ مثال ڈپریشن کا شکار ہیں, آپ کو انگزائٹی ہے, انکس ہے, لوگوں کو پیار بانٹیے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے اندر ایک بڑی نرمی محسوس ہوگی. اور جتنا زیادہ آپ دوسروں کو دینے والے بنتے جائیں گے اتنی زیادہ خیر آپ کے اندر آئے گی. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے, اور اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دنیا کی سب سے کامیاب ہستی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے لیے کیا فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 159 میں, فبما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بڑے نرم مزاج ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب, اگر آپ فظ ہوتے, غلیظ القلب ہوتے, آپ کہتے ہیں کہ فظ کس کو کہتے ہیں؟ انتڑیوں میں جو گندا پانی رہتا ہے, اوجڑی کے اندر کا پانی سوچ لیں. اللہ نے اتنی گندی چیز کو سامنے رکھ کر بتایا کہ نبی آپ کا اتنا نرم ہونا, زبان کا میٹھا ہونا اور دل کا سچا ہونا, یہ وہ خوبیاں جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گرد گھرتے ہیں. لوگوں کو آپ کی شکل سے کچھ نہیں ہوتا, لوگ آپ کے کپڑوں سے چند منٹ کے امپریس ہوں گے, ان کو آپ کی گاڑی فون سے کیا لینا, لوگ آپ کے اخلاق کے دیوانے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ لوگ محبت کب کرتے ہیں آپ سے؟ جب آپ ان کے معاملات میں ان کی مدد کرتے ہیں, جب ان کو آپ کی ضرورت ہو تو آپ حاضر ہیں, آپ ان کے اندر دلچسپی لیتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہر بندے سے کہیں کہ آپ کی میں مدد کروں, جو آپ سے مدد لینا چاہے, جو آپ کے ساتھ کلوزنیس محسوس کرے, آپ کو پھر اس میں دلچسپی لینی چاہیے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم تو اتنے بڑے لوگ ہو گئے. اب بچوں کے معاملوں میں کیا دیکھیں, یہ بچے ہیں. آپ کسی کے گھر جائیں نا, کم از کم شروع میں 5 سے 6 منٹ بچوں کو دیں. دیکھیے بچے ایسے آپ کے گرویدہ ہوں گے کہ وہ لا لا کے اپنی چیزیں آپ کو دکھائیں گے. ہم بعض دفعہ اپنے ینگ بچوں کو اوور لک کر دیتے ہیں, بعض دفعہ ہم کہیں بھی جائیں, روڈ پہ ہیں, ایون مسلم گروسری اسٹورز میں ہم سامنے کو سلام نہیں کرتے, اسمائل نہیں دیتے, کیونکہ مصروف پڑے ہیں. تو ہر بندے کو توجہ چاہیے ہوتی ہے.